कार्यक्रम के पुण्यार्चक है कीर्तन सम्राट तात्या साहेब चौपड़े भिलवड़ी, डॉक्टर आपा साहेब चौपड़े, श्रीमती भारती आपा साहेब चौपड़े, डॉक्टर आशुतोष चौपड़े, श्रीमती डॉक्टर दर्शन चौपड़े एवं बेबी अनुष्का चौपड़े, डॉक्टर प्रीतम शाह, श्रीमती डॉक्टर प्रियंका शाह, पुत्र आदित्य शाह एवं राजेश शाह, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया। व्हाट्सएप नंबर 9637197108।
सिद्धेभ्यः ओम नमः। सिद्धेभ्यः ओम नमः। सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आज के प्रवचन वत्सलत्व भावना की जय।
जय बोलो नियम सागर जी मुनि महाराज की, जय बोलो समस्त आचार्य संघ की जय हो।
तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत यह अंतिम भावना जिसका नाम प्रवचन वात्सल्य भावना है, वात्सल्य शब्द को प्रवचन शब्द के पश्चात रखा गया है। समझ में आया है, भगवान की दिव्य ध्वनि भव्य जीवों के कल्याण के लिए जब खिरती है, खिरने वाली उसी दिव्य ध्वनि को हम प्रवचन समझते हैं। उस प्रवचन के प्रति वात्सल्य, उस प्रवचन के प्रति अनुराग, उस प्रवचन में विश्वास, उस प्रवचन के प्रति श्रद्धा जिसको हो चुकी है वह प्रवचन के प्रभाव से अपनी आत्मा को प्रभावित करता है। अपनी आत्मा को प्रवचन से प्रभावित करे यह हमारे लिए आवश्यक बात है। प्रवचन के प्रति हम प्रभावित हैं तो सम्यक दर्शन भी हमारे जीवन में बहुत सुलभता से आ जाता है। सम्यक तो हमारी ओर आता है, हमको किधर जाना पड़ेगा, हमको भगवान की वाणी के प्रति जाना पड़ेगा, भगवान की वाणी को सुनना पड़ेगा, वह प्रवचन है, उसके प्रति अनुराग हमारे लिए चाहिए। इस जीवात्मा ने भगवान की वाणी को छोड़कर अन्य अन्य जितने प्रकार के संसार में वचन होते हैं उन पर इस जीव ने विश्वास भी किया, उन वचनों को सुना भी, उन वचनों को सुन करके श्रद्धा भी किया, विश्वास भी किया और उन वचनों में हमारे लिए सुख की प्राप्ति हो जाएगी इस प्रकार से धारणा भी बना लिया था। लेकिन इस आत्मा को वास्तविक सुख की उपलब्धि उन वचनों से नहीं मिल पाई जिन वचनों से मिलने की हम प्रतीक्षारत रहते थे अनादिकाल से। एक जिनवाणी है और एक जनवाणी है। जिनवाणी क्या होती है ये तो अनादिकाल से हम लोगों को पता नहीं था। पता लगता सत्संग करे यह बात मन में आई नहीं, और यदि आई थोड़ा बहुत खोज भी लिया तो रुचि से नहीं खोजा, इसलिए सत्संग का लाभ भी नहीं हुआ। और सत्संग का लाभ ही नहीं हुआ तो फिर प्रवचन का लाभ कैसे होगा। सबसे पहले संसारी प्राणी को प्रवचन से जुड़ना होता है। प्रवचन से जुड़े, प्रवचन सुने। किसका प्रवचन? दो प्रकार का प्रवचन होता है, लेकिन एक प्रवचन प्रवचन होता है और एक वचन ही होता है, प्रवचन नहीं होता। जो वचन सुनाते हैं, मैं आपको सुखी बनाऊंगा, आपको जो कोई भी संकट हैं आपके जीवन के उन सबको मैं दूर करूंगा, ऐसा वचन देकर जो प्रवचन करते हैं उन वचनों में प्रवचन नहीं रहता, वे वचन अवश्य होते हैं। ऐसे वचनों को सुन करके हमने अनादिकाल से अपने जीवन को प्रवचन में नहीं लगाते हुए वचनों के लिए अपने जीवन दे दिया, और उधर से वचन लिया भी और इधर से वचन दिया भी, दोस्ती हो गई, इस तरह से व्यवहार हो गया। वह भी सामने वाला कहता है आपके संकटों को मैं दूर करूंगा, भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान का प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास बहुत सारी विद्याएं हैं, हमारे पास बहुत सारे शक्तियां हैं, चमत्कार हैं, साधन हैं, आप इन सब को छोड़ करके कहां जा रहे हैं। इन भौतिक शक्तियों को लेकर के दूसरे को सुखी बनाने का प्रयास करता है और खूब अपने वचनों से जनता को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, और जनता भी ऐसी होती है, वह भी प्रभावित होती है। जिनके ऊपर प्रवचन का प्रभाव नहीं है, जन वचनों का प्रभाव तो होता ही होगा ना, होता है। जब हमारे लिए दूध पीने को नहीं मिला तो कम से कम पानी तो पी ही लें, ये भाव तो जागृत होंगे ही। और ऐसा इस संसारी प्राणी का विचित्र दशा बन चुकी है, यह वास्तविक सुख के खोज में तो निकला नहीं, और सुख के नाम से निकला तो भौतिक सुख मिलता रहा, मंत्र तंत्र विद्या इत्यादि के माध्यम से अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास भी किया तो भौतिक प्रयास हुआ, और उस भौतिक प्रयास से भौतिक सुख भी मिला, तो वह न तो कोई मंत्र से मिला और न ही विद्या से मिला, बल्कि वह सुख जो भौतिक भी मिलता है वह अपने पुण्य के प्रभाव से मिलता है। पुण्य की सत्ता होती है, पुण्य का उदय होता है, उस वजह से मिलता है। लेकिन बाहर वालों का वचन मन को जब प्रभावित ही कर चुका है तो ऐसा लगता है इनके वचनों के वजह से मैं सुखी हो गया। मेरे लिए भौतिक सुख जितने भी चाहिए थे वो सब कुछ मिल गया। अब कुछ मुझे पाना नहीं है, सब कुछ मिल चुका है। यही भ्रम होता है। मुझे मंत्रों ने सुख दे दिया, मुझे इन विद्याओं ने सुख दे दिया, मुझे इस व्यक्ति ने सुख दे दिया, इस व्यक्ति ने मुझे समझाया, ऐसा कहते कहते वह अंतरंग में क्या रहस्य है, अंतरंग का रहस्य को तो पता नहीं लगा पाता, और वह दूसरे ने ही मुझे सुख दे दिया ऐसा कहकर बैठ जाता है। यदि इस संसार में दूसरा कोई सुख देने वाला होता तो हमको धर्म कार्य, दान कार्य, पुण्य कार्य करने की आवश्यकता ही क्या है। और यदि हम धर्म कार्य, पुण्य कार्य ये सब नहीं करते हैं और पुण्य का अर्जन नहीं करते हैं, तो पुण्य का अर्जन नहीं करने पर भी और इस तरह से हमारे पास केवल पाप ही पाप रह जाए और पाप का उदय है, तो पाप के उदय में भी कोई हमारे लिए सहयोग देने बाहर से आ सकता है क्या? हमारे पाप कर्म को टाल करके जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख को देने की क्षमता इस संसार में कोई भी विद्या, कोई भी देव, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र हमारे लिए सहायक बन सकता है क्या? यहीं पर हमारा भ्रम टूट जाना चाहिए। और यह भ्रम अगर हमारा एक बार टूट गया ना, तो फिर हमारे लिए प्रवचन से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। प्रवचन से जुड़ने का मतलब इतना ही, ये भगवान की वाणी है कि बाहर का व्यक्ति आपको सुख दुख देने में निमित्त तो बनता है, नहीं बनता ऐसा भी नहीं, निमित्त तो बनता है, दुख देने में भी निमित्त बनता है और सुख देने में भी निमित्त बनता है। ये भगवान के वचन है, ये वचन ही प्रवचन है। निमित्त तो बनता है लेकिन दुख देने वाला दुख तभी दे पाएगा जब हमारा पाप का उदय हो। सुख देने वाला भी निमित्त बन करके सुख देने के लिए आया है, तो वह सुख भी तभी दे सकता जब हमारे पास पुण्य की सत्ता हो, पुण्य का उदय हो, हमारा उपादान हो, उपादान निमित्त जागृत हो, तो बाह्य निमित्त भी काम करता है। अंतरंग में पुण्य का उपादान हो तो बहिरंग में पुण्य के निमित्त मिलते हैं, तो उस पुण्य के निमित्त से और इधर पुण्य के उदय में हम जरा भी पुरुषार्थ करेंगे तो वह हमारे लिए सुखी बनाता है और हम उसके निमित्त से सुखी बन जाते हैं। बीच में एक पुण्य की कड़ी ऐसी रहती है, हमको उधर उधर से पुण्य का लाभ लेने के लिए यह निमित्त बनता है। तो जीवात्मा के पास जो पुण्य होता है वह उपादान रूप काम करता है। पुण्य का उपादान हो तो बाह्य निमित्त काम करेगा, पुण्य का उपादान न हो तो बाह्य निमित्त काम ही नहीं करेगा। और संसार में ये कह करके बाह्य निमित्त कोई उपस्थित होता है तो उससे सुख मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते। सुख देने वाला कभी कभी सुख दे नहीं पाता और दुख देने वाला भी कभी कभी दुख नहीं भी दे पाता। उनके दुख के निमित्तों को पाकर हम सुखी रहते हैं, कभी कभी वो दुख दे नहीं पाता, हम दुख ले नहीं पाते। पार्श्वनाथ भगवान का यही हुआ। दुख देने वाला कमठ आया लेकिन पार्श्वनाथ के ऊपर एक हफ्ते तक, 7 दिन तक पार्श्वनाथ का कुछ भी वह बिगाड़ नहीं पाया, तो पार्श्वनाथ दुखी भी कहां हुए। पार्श्वनाथ तो अपने आप में तल्लीन थे, वे आत्म ध्यान के अलावा कुछ कर नहीं रहे थे। और दुख देने वाला कमठ आया, कमठ 7 दिन पहले आया, और ये धर्मेंद्र यक्ष यक्षिणी ये बाद में आए, 7 दिन बाद में आए। पर संकट का काल 7 दिन पूर्व से ही शुरू हो चुका था, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के पास पुण्य की सत्ता इतनी थी कि कमट उनका बाल बंका कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक उपसर्ग करने आया है जो दुनिया को प्रवचन सुना सकता है, सुनाने की क्षमता को लेकर के आया है, तपस्या में लीन है, कुछ समय के पश्चात केवल ज्ञान होने वाला है, समोसरण की रचना होने वाली है और भव्य जीवों को प्रवचन सुनाने वाले हैं। प्रवचन सुनाने वाले पर ही अपने वचन बरसाने के लिए आ गए, तो पुण्य के उदय में अशुभ निमित्त जब मिलते हैं बहिरंग में, तो वे अशुभ निमित्त भी पुण्य के काल में कुछ नहीं कर सकते। आप पूछ सकते हैं, यहां पर प्रश्न उठा सकते हैं, पार्श्वनाथ तो इतने पुण्यवान थे और 7 दिन तक कमट कुछ नहीं कर पाया, तो पुण्य के उदय के काल में, पुण्य के उदय के काल में ये कमट आया ही कैसे? पुण्य के उदय के काल में यह कमट आया ही कैसे? आ सकता है, निमित्त कभी भी आ सकते हैं, अच्छे निमित्त कभी भी आ सकते हैं और बुरे निमित्त भी कभी भी आ सकते हैं। ये निमित्त सभी अपने अपने रोड से गुजरते रहते हैं, इनका रास्ता अलग रहता है, बाहर का रास्ता इनका रास्ता है और अंदर अपने उपादान से हम क्या हैं, कैसे हैं, ये हमारे ऊपर निर्धारित रहता है। हमारे आत्मा के भीतर पुण्य की सत्ता है, पुण्य का उदय चल रहा है, तो बाहर से शुभ निमित्त भी गुजरेंगे, अशुभ निमित्त भी गुजरेंगे, लेकिन उसके फल को पाने के लिए, अशुभ फल को पाने के लिए हमारे पास भी अशुभ भाव चाहिए, हमारे पास भी अशुभ कर्म का उदय चाहिए। हमारे पास पुण्य का उदय है और इस पुण्य के उदय के काल में हम बुरा काम करना चाहते हैं तो हमारा पुरुषार्थ हमारा अधीन होता है, हमारा पुरुषार्थ हमारे अधीनता में है। पुण्य का उदय है और हम कहीं चोरी करने के लिए जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं क्या? पुण्य आपको मना करेगा क्या? पुण्य आपको बचाएगा क्या? नहीं, आपके कार्य से तो नहीं बचाएगा। आप भले ही अपने भावों से, पाप से भर गए हैं और पाप का कार्य करना चाहते हैं तो पुण्य मना नहीं करता। चोरी करने वाला चोरी करने के लिए जब जाता है तो वह चोरी के भाव से ही जाता है। ये चोरी के भाव तो, वर्तमान भाव तो अशुभ हैं, पाप के हैं, पापाश्रव के कारण हैं, पाप बंद हो रहा है, पापाश्रव और पाप बंद दोनों चल रहे हैं, लेकिन पीछे पिछले भाव में उदय में आया हुआ जो कर्म है, जब कुछ अच्छा किया था उसने, वह पुण्य कर्म का उदय हो चुका है। और इस पुण्य कर्म के उदय में भी हमारे भाव ऐसे हो सकते हैं कि मुझे पाप के कार्य करने हैं। क्यों? पाप का कार्य करूंगा तो जल्दी साहूकार बनूंगा और पुण्य से कार्य करता रहूंगा तो जीवन व्यतीत तो हो जाए तो मैं साहूकार नहीं बन पाऊंगा। जल्दी साहूकार बनना है ना, जल्दी साहूकार बनने के लिए भी पुण्य का उदय आवश्यक है। पुण्य का उदय आपको पाप कार्य करने से रोकता नहीं है। हमको करना है या नहीं करना है पाप का कार्य, ये हमारे ऊपर निर्धारित है। और हमारे ऊपर निर्धारित है इसलिए पाप के उदय में भी यदि हम पुण्य करना चाहते हैं तो पुण्य करने के लिए भी हम फुर्सत रहते हैं। पाप के उदय में व्यक्ति पुण्य का कार्य, धर्म का कार्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। और पाप कर्म के उदय में संकट आने पर ही ज्यादा धर्म लोग करते हैं। मंदिर में भीड़ लगती है संकट आने पर। संकट तो पाप कर्म के उदय में आया है, लेकिन आज मंदिर में भीड़ क्यों दिख रही है? तो संकट आया है। कौन सा संकट? बस संकट आया है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, अलग अलग संकट हैं। और उस संकट निवारण के लिए आए हैं, पाप कर्म का उदय चल रहा है, और मंदिर में जो भगवान हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनसे निवेदन करने आए हैं, हमारे संकट को आप ही टाल सकते हैं, आप टालो, पाप का उदय चल रहा है, सभी लोग आए हैं, उसमें एक भी व्यक्ति पुण्य वाला नहीं है। और जब पाप का उदय आता है, एक भी पुण्य वाला जब नहीं रहता कोई, तभी भगवान के पास जाता है, तभी धर्म याद आता है, और धर्म करने के लिए व्यक्ति तभी दौड़ता है। पाप कर्म का उदय होने पर दीक्षा लेने के भाव भी आते हैं, घर छोड़, ऐसा भाव आता है कि नहीं आपको? बहुत सता रहे हैं घर के लोग, बहुत परेशानियां हैं, आपको महाराज याद आते हैं, महाराज याद आते आते, महाराज कितने सुखी, उनके ऊपर कोई समस्या नहीं है, उनके जीवन में रहते हैं, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। क्या ये संकट, क्या ये संसार? संसार को छोड़ने के भाव आते हैं, पाप कर्म के उदय से आप परेशान हैं, लेकिन इस पाप कर्म के उदय में, उस परेशानी में आपको वैराग्य होता है क्या? नहीं। विशेष करके पुण्य कर्म के उदय में, और भौतिक सुख जब मिलता है जीवों को, सुखमय जीवन रहते समय किसी को वैराग्य नहीं रहता। आज तक जितने लोगों को वैराग्य हुआ है, संकट के काल में ही हुआ है। विशेष करके सुख के काल में वैराग्य हो जाए तो ऐसे बहुत कम जीव रहते हैं। सुख के काल में वैराग्य होता भी है तो उन लोगों को होता है जो वस्तु स्वरूप का विचार कर रहा है कि इस जिंदगी में असली जीवन जीने का जीवन, असली जीवन कौन सा है, इस संबंध में जो विचार करते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते करते आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, संसार की असारता का ज्ञान हो गया, और संसार असार है, इस असारता को छोड़कर जो सार है उसको पाना है, और आत्मा को सार वस्तु देकर इसको समय सार बनाना है। सारभूत वस्तु को दे करके समय सार बनाना है, ऐसा विचार कब आता है? स्वाध्याय करते समय। स्वाध्याय करते समय यहां पुण्य का उदय भी हो सकता है, और व्यक्ति सुखी भी हो सकता है, भौतिक रूप से भी सुखी है, आंतरिक आत्मा में भी पवित्रता है, स्वाध्याय कर रहा है, पुण्य का उदय भी चल रहा है, पुण्य के उदय के काल में भी वैराग्य आना संभव है, लेकिन बहुत कम लोगों को आता है। ये संकट क्षणों में वस्तु स्वरूप का विचार ज्यादा करता है, सुख के क्षणों में वस्तु स्वरूप का विचार जीव ज्यादा नहीं करता, बहुत कम करता है। जीवन के रहस्यों को समझकर जीवन जीना है। सुख कहाँ है इसको ढूंढने के लिए हम जब बाहर जाते हैं तो गलत करते हैं। सुख बाहर नहीं, सुख के कारण बाहर नहीं, चाहे वो आत्मा का सुख हो चाहे भौतिक सुख हो, इन दोनों सुखों के जो कारण हैं वे कारण अंदर ही हैं, बाहर नहीं हैं। ये भ्रम टूटना चाहिए, और ये भ्रम टूट जाए तो प्रवचन वात्सल्य भावना आज का साकार हो जाएगा और सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाएगी। सम्यक दर्शन की उपलब्धि ऐसे ही होगी। क्या सम्यक दर्शन ऐसा हो सकता है? सोचो, क्या सम्यक दर्शन ऐसा हो सकता है जो सुख के कारण हैं वे बाहर हैं और मेरे पास सुख के कारण कोई है ही नहीं, मैं दर दर भटकूंगा जब तक बाहर के सुख के सुख बाहर का सुख नहीं मिलेगा और बाहर के सुख के कारण नहीं मिलेंगे। सुख का कारण भी बाहर और सुख भी बाहर, बाहरी सुख को ढूंढने के लिए कारणों को भी बाहर ढूंढते हैं और सुख को भी बाहर ढूंढते हैं। तो ऐसे ढूंढते को भी और सुख को भी बाहर ही बाहर ढूंढने वाले जीव कितने हैं संसार में? ज्यादा हैं क्या कम हैं? ज्यादा हैं। मुझे इस ईश्वर से, इस देव से, इस मंत्र से, इस निमित्त से, उस निमित्त से, इस व्यक्ति से सुख मिलने वाला है, सुख का कारण यही व्यक्ति है, दुख का कारण यही व्यक्ति है। कारणों को बाहर खोजते खोजते कारणों को पाने का प्रयास करते हैं और उसमें सुख खोजना प्रारंभ कर देते हैं। क्या ऐसे बाह्य कारण को खोजने से सुख की उपलब्धि होगी? न भौतिक सुख की उपलब्धि होगी, न परमार्थ सुख की उपलब्धि होगी। दोनों सुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही जो सुख हैं, सुख के कारण हैं, वो दोनों ही अंदर हैं, आत्मा में हैं। यह बात अच्छी तरह से समझना है। आज अंतिम प्रवचन है, अंतिम प्रवचन है, बहुत अच्छी तरह से समझना है और भ्रम को हटाना है, भ्रम को दूर करना है। डरना नहीं है। भ्यू न कहा संयम धारण करा, भ्यू न कहा सम्यक तो धारण करा। बाहर के कारणों को अपना करके उसमें सुख ढूंढने का जो प्रयास है वो सर्वथा व्यर्थ है, वो सर्वथा व्यर्थ है। यहां कारण विद्यमान है, पुण्य ही हमारा अभ्यंतरी कारण है जिसके उदय में हम भौतिक सुख प्राप्त करते हैं। तो विश्वास हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। जिनवाणी क्या कह रही है? कर्म सिद्धांत क्या बोल रहा है? जो कर्म सिद्धांत है समस्त संसारी प्राणी को वही एक सन्मार्ग है। जो व्यवस्थित कर्म सिद्धांत है वो कर्म सिद्धांत हमारे आत्मा के भीतर पहले से गणित फिट है। इस गणित कर्म सिद्धांत के गणित के आधार से ही हम सुखी दुखी होते रहते हैं, इसमें जरा भी शंका नहीं करना चाहिए। कौन जानता है पुण्य, कौन जानता है पाप, ये विचार बिल्कुल ठीक नहीं है। कर्म है, कहाँ है? आत्मा में है। दिखते क्यों नहीं है फिर? ऐसा नहीं पूछना। कर्म इतने सूक्ष्म तत्व हैं, आपको चलने वाली चींटी नहीं दिख रही है तो कर्म कैसे दिखेंगे? शरीरधारी एक छोटी चींटी को देखने की क्षमता आपके आंखों में नहीं है तो कर्म परमाणु कैसे दिखेंगे? लेकिन ये कर्म हैं, सबके पास हैं, एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक के सभी जीवों में हैं। नरक में नारकी जीव कर्म का फल भोग रहे हैं, देवगति में सारे देव कर्म का फल भोग रहे हैं, मनुष्य गति में सारे मनुष्य कर्म का ही फल भोग रहे हैं, तिर्यंश गति के सारे तिर्यंश एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक के सारे जीव कर्म का ही फल भोग रहे हैं। और इन चारों गति के जीवों के जीवन में जो भी सुख की घड़ियां आती हैं और दुख की घड़ियां आती हैं, इन सुख दुख की घड़ियों को हमारे भीतर का जो असली कारण है वही सुख दुख को देता है, किंतु वह भी जबरदस्ती नहीं। कर्म हमें जबरदस्त सुख भी नहीं देते और जबरदस्त दुख भी नहीं देते, कर्म भी जबरदस्ती नहीं करते। और बाहर में जो कारण है, ये ग्राहक आया इसलिए मैं सुखी बना, मेरी दुकान चली, अगर ये नहीं आता तो मेरी दुकान नहीं चलती, ऐसा जीव विचार करता है कि नहीं करता है? इसके वजह से मैं सुखी हुआ, लेकिन अंतरंग में उस ग्राहक के आने के लिए आपका पुण्य निमित्त था क्या? नहीं, निमित्त था। अगर ये पुण्य के निमित्त के बजाय पाप का निमित्त होता तो ग्राहक आता? नहीं आता। ये सिद्धांत सत्य है। कर्म सिद्धांत को आप यूं ही उड़ाना अज्ञान हो सकता है, लेकिन आप अज्ञान से कर्म सिद्धांत को न आते हुए उसको उड़ाएंगे भी, वो उड़ने वाला नहीं है, वो तो अंदर ही रहेगा, अंदर ही बैठा रहेगा, कैसे उड़ाओगे? बहुत चीजें समझने की हैं, समझ समझ कर जीने के लिए यह जीवन मिला है। बहुत समझदारी आना चाहिए, बहुत विवेक आना चाहिए, समीचीन ज्ञान, समीचीन सोच सकता है। और अज्ञान जो ऐसा विचार करने वाला ज्ञान, इसको कौन जानता है, छोट, ये अज्ञान है। कौन जानता है स्वर्ग नरक? फालतू बातें, दिखाओ मुझे स्वर्ग कहाँ है, दिखाओ मुझे नरक कहाँ है, फालतू बातें करते। मैं पाप कर्म कर रहा हूं केवल इस जीवन तक ही यह सीमित है, मैं किसी को अनिष्ट भी पहुंचा रहा हूं तो यह अनिष्ट किसी दुर्गति का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि नरक नहीं है, नरक नहीं है तो दुर्गति मिलेगी कैसी? और नरक नहीं है तो मैं जो अनिष्ट पहुंचा करके दूसरे को दुख दे रहा हूं, ये दुख तो दुखी करने का कार्य तो हो जाता है, इससे पाप कर्म का बंद, पुण्य कर्म का बंद, ये व्यर्थ की कथा बीच में नहीं चाहिए। ऐसा सोच सोच कर जीव पाप कर्म भी करता है, पाप कर्म करता है, और वो पाप पाप लग रहा है इस पर विश्वास नहीं है, पाप लग रहा है इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन पाप का कार्य जो कर रहा है, मेरे वजह से दूसरा कोई दुखी हो रहा है ये जानता हुआ भी दुखी करता है, और उसके फल पर वह विश्वास नहीं करता। जो फल पर विश्वास नहीं करता वही पाप कर्म ज्यादा से ज्यादा करता है, और पाप को पाप समझने वाला, पाप को पाप मानने वाला, पाप के फल आदि के बारे में विचार करने वाला, यदि वह ज्ञानी है तो वह जानबूझकर किसी को भी दुखी नहीं करता। यदि अपने माध्यम से किसी को पीड़ा हो जाए तो वह बाद में हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र बोल करके मेरे तरफ से कोई आपके लिए तकलीफ हुई हो, दुख हुआ हो, तो उसके लिए क्षमा कर देना। ज्ञानी क्षमा मांगता है, अज्ञानी कैसे क्षमा मांगेगा? नहीं मांगता है ना। अज्ञानी कभी किसी से क्षमा मांगता ही नहीं है। उसका मन, उसकी आत्मा इतना कठोर होता है कि उस कठोरता के कारण से वह अच्छा कुछ करता ही नहीं। अज्ञान के फलस्वरूप, अज्ञान के प्रभाव से वह सदा अनिष्ट ही करता रहता है, और यह अनिष्ट कार्य करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, एक न एक दिन मरण